ओम शांति। बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, थोड़ा कैटेगराइज करके एक जैसे प्रश्न एक साथ मैं पूछ लेती हूँ और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं पूछूंगी सभा में, ठीक है। जनरल जो सभी के लिए जो लाभदायक होगा, पुरुषार्थ के कनेक्टेड बातें, वो वही बातें मैं दीदी से आज पूछने जा रही हूँ। दीदी वेलकम। दीदी सबसे पहला प्रश्न है, कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों साथ साथ सेवा करने के लिए बाबा कहते हैं, है ना, तो वो कैसे करे? एक करने जाए तो दूसरा छूट जाता है, दूसरे करने जाए तो तीसरा छूट जाता है, तो तीनों साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा साथ साथ कैसे सेवा करें?
सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा। आत्मा के पास जब कोई अनुभव की चीज है तो पहले कौन उसको एक्चुअली अनुभव की चीज इन्फॉर्मेशन से अनुभव करने से पहले इन्फॉर्मेशन होती है, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग, फिर उसकी प्रैक्टिस, फिर उसका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है तो वर्णन बड़ी अच्छी तरह से कर सकेगा। तो ये भी बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा सेवा। तो कर्मणा सेवा माना ईश्वरीय गुणों से व्यवहार भी हो और साथ साथ कर्म करते कर्म योग में भी रहे, तो मन सार कर्मणा इकट्ठी सेवा हो गई। कर्म सिर्फ कर्म योग का, कर्मणा सेवा यानी कर्म इंद्रियां हमारी विदाउट बोले मनसा की शक्ति की का दर्शन करा रही हैं। जैसे आज बाबा ने कहा तुम्हारी स्टेज ऐसी होनी चाहिए जैसे कि दर्पण। दर्पण के सामने जब व्यक्ति सामने खड़ा होता है तो उस दर्पण बोलता नहीं है, पर बोल बिना बोले ही अगर कुछ दाग लगा हुआ है तो दर्पण नहीं कहता दाग, मुख से नहीं बोलता दाग है, पर अपनी स्वच्छता और क्लैरिटी से अगर दर्पण पर धूल लगी हुई है तो आपका चेहरा साफ है या आपका चेहरा सजा हुआ है या मिट्टी वाला है नहीं बताएगा। तो जब हमारी मनसा दर्पण की तरह है, स्वच्छ है, तो हम हमारी जो दृष्टि होगी उसमें स्नेह समाया हुआ होगा। तो कर्म क्या हुआ, मन ने अपना कर्म मुस्कुराहट से, दृष्टि से और एप्रिसिएशन से किया, तीनों काम हो गए मनसा वाचा कर्मणा। तो ये हुआ सूक्ष्म सेवा। फिर मनसा सेवा का मतलब शुभ भावना, शुभ कामना। तो मेरे मन में भावना अच्छी है, मेरी कामना यानी उनके लिए उनके कल्याण की इच्छा है मुझे, जैसे मुझे बच्चों के लिए कामना है, कोई बड़ों के लिए मेरी भावना है, भावना रिस्पेक्ट है, प्यार है, कामना में इच्छा है। अच्छा, अब इच्छा है तो उसमें मेरी कर्म करने की शक्ति, मैं उसमें सहयोग दूंगी, मदद करूंगी। तो ऐसे विश्व कल्याण का कार्य करने के लिए मेरे मन में लगन हो, शुभ भावना, शुभ कामना, फिर उस कामना से दूसरी एक प्रकार की सर्विस, फिर मेरे साथ मानो कोई कंपनी, कोई स्टेज, ऐसी स्टेज वाला व्यक्ति है जो मेरे साथ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है पर किसी दूसरे के साथ हिसाब किताब है, वो कंप्लेंट करता है, तो मैं कंप्लेंट को अंडरलाइन नहीं करूं अपने पास, पर उसकी उसकी बात को समझ करके फिर उनको समझाऊं कि आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, सिचुएशन उस समय क्या होती है, थका हुआ कोई व्यक्ति है आपके पास आया, आपने उनको फौरन कुछ काम दिया, वो कहेंगे मैं और कोई कर लेवे ना, मैं थोड़ी करूंगा। तो अभी क्या है कि आपने समझ लिया तो आपकी ये नहीं होगा ना क्यों करते हो, आपकी भावना है उनकी बात को समझ करके फिर उनको समझाना कि सेवा है तो आपको ही फायदा मिलने वाला है ना।
वह ईगो बीच में नहीं आता है।
ईगो भी नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ या डिटैच्ड स्टेज। ईगो होगा तो जैसे मैं अपनी पावर से इम्प्रेस कर रही हूँ उनको, किसी को मुझे अपनी पावर से डायरेक्ट नहीं करना है, मुझे अपनी शुभ भावना से उनकी दृष्टि में परिस्थिति को समझने की शक्ति देनी है।
तीनों साथ साथ अगर करना है, डिटैचमेंट हो, शुभ भावना हर एक के प्रति हो, निस्वार्थ भावना हो, तो तीनों साथ हो जाएगा, मनसा वाचा
कर्मणा हो जाएगी,
तीनों सेवाएं साथ
साथ हो जाएगी, मनसा वाचा कर्मणा होगा। और फिर सिर्फ कर्मणा सेवा है तो हृदय में शुद्धि खुशी है, मेरा भाग्य बन रहा है, तो वो कर्म मन से भी कर रहा है और भाग्य समझ करके सहयोग भी दे रहे
हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा काम है तो इसीलिए क्या मैं जो छोटा काम दिया हुआ है, छोटी सेवा दी है, वो भावना नहीं रहता
नहीं।
लेकिन फिर बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा वो खुपले बनाते थे, तो खुपले बनाते समय भी इतने ऊंच स्थिति बाबा की होती थी।
नहीं, सेवा तो सेवा है, सेवा मतलब सुख देना। अब जो भी हम कर्म कर रहे हैं, मानो हमको सफाई की सेवा मिली है, हमने स्थान स्वच्छ बनाया, हमको खुशी है, कोई और आया उन्होंने स्वच्छ स्थान देख करके वो खुश हो गए, और मेरे को झाड़ू लगाया ही नहीं, क्या है और कोई लगा देगा, तो मैंने सेवा तो इनडायरेक्ट तो डिससर्विस की, और वो मैंने सेवा समझ के की, और उसका प्रभाव छोटा काम है। बाबा के समय बाबा ने सेवा बैठ के ज्ञान से नहीं की, ज्ञान हम बच्चों ने सुनाया, बाबा ने सेवा का प्रैक्टिकल स्वरूप से की। कोई आया बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा उस समय धोबी घाट पर थे, बाबा ने कहा बच्चे उनको यही ले आओ ना, कहा बाबा आपको निकर पड़ी हुई है, कपड़े आपका धोबियों जैसे क्या है, भगवान इनके तन में आते हैं, वो कैसे समझेंगे, समझेंगे मजदूर है कोई, और हम उनको इतनी महिमा करके आए हैं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे वो मेरे से मिलने नहीं आया, वो तो बाप से मिलने आया ना। और बाबा ने बड़े प्यार से कहा आओ बच्चे आओ, वो हैरान हो गया, ये ब्रह्मा कुमारी इसका हेड और ये धोबी का काम कर रहे हैं। तो सेवा मनसा भावना अच्छी थी, वाचा मीठे बच्चे कह दिया, कर्म करते हुए वो देख के गया। अब छोटा सा काम है, अनाज साफ करते थे बाबा, तो बाबा कहते थे अभी थोड़ा ही छोड़ के जाएंगे, यहीं बुला लो। वो कहते थे नहीं हम भी बैठ जाते हैं, अनाज साफ हो जाएगा ना, फिर आपके पास क्लासरूम में जाके बैठेंगे। एक ऑफिसर था जर्मन, उसका लंदन का, बहुत बड़ा डेस्यू का था, मतलब दिल्ली का बड़ा ऑफिसर था, आया। अब उस समय नौकर नहीं होते थे मधुबन में, ये अर्ली 60s की बात है, सब काम अपने हाथ करते थे। बड़े बड़े बर्तन थे, तो बहने थोड़ा करने में आधा करती थी आधा नहीं कर सकती थी, उतना साफ नहीं होता था। उसने कहा मैं सेवा करूंगा ये, तो वो बर्तन बड़ा साफ कर रहा था, तो गीत गाया, बाबा ने मुझको बना के अपना बर्तन मांजना सिखा दिया। तो वो खुशी जो थी, तो मैं अफसर हूं ये भूल गया, जो कभी नहीं किया, पानी का गिलास भी नहीं धोया, वो जूठे बर्तन और बड़े बड़े बर्तन धुलाई कर रहे। भाव है, प्यार है जहां, तो वहां बिना बोले कर्म से सेवा हो जाती।
थैंक यू दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि ड्रामा को लेकर के, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है ना ड्रामा ड्रामा के बारे में कि मतलब अभी अभी आए हैं तो फिर वैसे फिर से लेट आएंगे, या पुरुषार्थ जो अभी ढीला हो रहा है तो अगले कल्प भी ऐसे ढीला होगा, तो फिर यहाँ क्या हर कल्प में आत्मा यही पाठ बजाती है, यही मतलब यही समस्याएं यही बातें फिर रिपीट होगी, तो क्या पुरुषार्थ अगर मतलब पिछले कल्प में
पिछले कल्प थी क्या है वो तो फिर से वो ही हो नहीं है।
हाँ, पिछले कल्प में अगर कुछ कम पुरुषार्थ किया होगा तो या क्या इस कल्प में थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ करने का मार्जिन है?
ठीक है, एक्चुअली हर कल्प के पुरुषार्थ की जो नोंद है वो इस समय हम रिकॉर्ड करते हैं। पहली बात है ड्रामा क्या है, ड्रामा थ्योरी नहीं है, ड्रामा स्टोरी की एक्ट है। कहानी लिखी हुई हो, आपने 5 बारी 7 बारी पढ़ ली, आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मैं ड्रामा देख के आया। महाभारत आपने कितने बारी पढ़ लिया, ये नहीं कहेंगे महाभारत फिल्म देख के आया, महाभारत पढ़ के आया। उसमें फिर जब वही फिल्म वही स्टोरी एक्ट हो गई तो कहेंगे ड्रामा देख के आया। तो एक्शन का नाम, कर्म का नाम ड्रामा है। अच्छा, उसमें फिर दो चीजें हैं, ड्रामा परम धाम में नहीं है, क्योंकि एक्टर्स परम धाम में एक्ट नहीं करते, वो तो बीज के रूप में जैसे कि थैली में पड़े हुए हैं, उगते नहीं है, उसमें से कुछ निकलता नहीं है। वही बीज जब धरती पर बोए जाते हैं तो क्या उसमें समाया हुआ है? अगर वो आम है तो प्रकृति में आते आम ही निकलेगा, अगर वो एप्पल का बीज है तो एप्पल ही निकलेगा। तो ऐसे हमारे संस्कार, ये जो बाबा कहते हैं तुमने भर लिए हैं संस्कार, उनका परिवर्तन करना है। मानो हमारे संस्कार बहुत श्रेष्ठ हैं, और वो हमारे संस्कार श्रेष्ठ में वायुमंडल का प्रभाव पड़ा, बरसात आ गई, मुझ आम को जो मीठा आम था वो कोई बहुत प्यार से खा रहा था, कीड़ा देख के फेंक देगा,
कीड़ा देख कर।
अब कीड़ा लग गया, राइट। तो हमारे अंदर भी चलते चलते प्रकृति के प्रभाव से विकार आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अब तुमको विकारों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, ताकि तुम ऐसा पवित्र फल फिर बन जाओ। तो वो धुलाई करने का काम हमारी एक्ट है। और दूसरी बात, ड्रामा दो बातों का है, क्योंकि यहाँ प्रकृति पर ड्रामा कर्म है, तो कर्म क्षेत्र पर कुदरत के लॉज हैं और स्पिरिचुअलिटी के भी लॉज हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के नियम और कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करना, जब दोनों में सत्यता हो तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा, ड्रामा बढ़िया होगा। तो परंतु कहा, खराब क्यों हो जाता है, होना नहीं चाहिए, मैं फिर गिर जाऊंगा, ये कैसे हो सकता है। अगर मुझे फिर गिरना ही है 5000 साल के बाद, पुरुषार्थ क्यों करूं? क्या मतलब पुरुषार्थ करने का, फिर वही तो हालत हो जाएगी। परंतु हमने आधा समझा आधा नहीं समझा। प्रकृति का लॉ है, वो हम पालन करते हैं। मुझे पता है कि मैंने मकान बनाया है, 100 साल के बाद ये पुराना होगा। मैं कभी सोचती हूँ, अरे क्या करना है मकान बना के, 100 साल के बाद तो ये पुराना हो जाएगा, छोड़ो मेहनत करने की।
तो 100 साल का आनंद तो लेंगे ना घर का।
तो अभी वो एक्ट का मकान का स्वप्न लिया, सचमुच देखना है तो बनाना पड़ेगा। और पता है पुराना आएगा, फिर भी बनाते हैं। अच्छा, मुझे पता है मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, मुझे पढ़ा लिखा के लायक बनना है, पर मुझे पता है वो कभी मरेंगे तो सही, क्या करना है, आखिर तो 60-70 साल के बाद मर जाएंगे ना, क्या करना है, उनके लिए पढ़ाई करके। छोड़ो उन बातों को, मैं रोज खाना खाती हूँ, मुझे पता है कल मुझे भूख जरूर लगेगी, सब घर वालों को भी।
कल तक नहीं दीदी, 3 घंटे के बाद ही भूख
तो
लगेगी।
कल भूख लगेगी, फिर बनाऊ ही नहीं ना। मैं नहीं सोती हूँ, आज नहीं सोऊंगी, क्यों, अरे कल उठना पड़ेगा। बाकी प्रकृति के नियम मैं सब पालन करती हूँ और सुख लेने के लिए। तो ये भी जो बाबा बार बार कहते हैं, स्वर्ग को याद करो, स्वर्ग को याद करो, इमीडिएट मेरी वैल्यू कितनी बढ़ती है। मेरा बीज थैली में पड़ा है, 5 साल पड़ा रहा, मेरी वैल्यू बढ़ेगी नहीं। वो 5 बीज धरती में बोए, 5 साल में 1000 गुनी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि एक पेड़ बन गया, उसमें से अनेक फल निकल आए। तो मैं अपनी वैल्यू क्यों ना बढ़ाऊं, इसको कहते स्वमान और अपनी समझ।
दीदी, इसमें एक और एडिशन है, मेरा पार्ट बदल नहीं सकता अगले कल्प में, ये सुनने में आ रहा है अभी? मेरा पार्ट नहीं बदल सकता अगले कल्प में।
कैसे समझूं क्या पार्ट था अगले कल्प? मुझे याद है मेरा पिछले कल्प में कौन सा पार्ट था।
वो भी तो है।
कैसे याद करूं कल्प में क्या था? इसलिए अभी जो मैं कर रही हूँ वो मेरा भविष्य बन रहा है। पास्ट तो भूल भी गया, पास्ट हो गया, मुझे तो अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेस्ट करना है।
बहुत बढ़िया दीदी, थैंक यू। अब इस कभी संकल्प नहीं करना, माताएं कभी मैं टीचर बन जाती, शादी से पहले मुझे ज्ञान मिल जाता तो झंझट नहीं होता था, मैं समर्पित हो जाती, ये होता वो होता, हर जो बात होती है ड्रामा में, हर चीज में कल्याण है ना, हर चीज में कल्याण। अच्छा दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्रता को लेकर के, बाबा को, क्योंकि सत्य की स्थापना कर रहे हैं बाबा, धारणा भी बहुत ऊंचा है, ब्रह्मचर्य की को पालन करना बाबा कहते हैं वो मस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते रहते, क्योंकि क्या होता है कि गृहस्थ में रहते इतने बिजी होते हैं, इतना पुरुषार्थ नहीं होता, योग इतना बैठ करके करने का मौका नहीं मिलता, तो कुछ महीने तक 8-10 महीने तक पवित्रता धारण कर लेते, लेकिन कभी कभी टूट भी जाता है, तो क्या करे, निरंतर वो पवित्रता बनी रहे, वो शक्ति, ताकि फिर आत्मा फिर से गिरे नहीं ना।
अच्छा, अभी पहली बात, पवित्रता क्या है? पवित्रता आत्मा का ओरिजिनल वैल्यू है, महत्व है। पवित्रता सुंदरता है, पवित्रता दिव्यता है, पवित्रता हमारी, हमारा अनादि आदि और अंत का गुण है जो संगम पर हमको मिलता है। तो जब मुझे ये याद रहे कि मैं ओरिजिनल इतनी देवता थी, मैं आत्मा देव आत्मा थी और मैं रेस्पेक्ट वर्दी थी, मेरे जड़ मूर्ति की पूजा हो रही है, मेरा बुत पूजा जा रहा है, क्यों पूजा जा रहा है, क्योंकि मैंने कभी चैतन्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनी, तो मेरी मूर्ति को भी मान दे रहे हैं। तो मेरे जीवन का लक्ष्य पवित्रता क्या है? मुझे अपने जीवन को डिवाइन बनाना है, उसमें कर्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। परिवार वो हमारा जो गृहस्थी जिसको हम बने, वो जब वेदर बदल गया, द्वापर से हमने रॉन्ग टर्निंग ले ली, तो जब मैंने लेफ्ट में रॉन्ग टर्निंग ली, सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस हुआ, तो उस डायरेक्शन में नाला है, खड्डा है, कीचड़ है, कांटे हैं, अब मैं उसी में मुझे रहना पड़ेगा, अनलेस मैं वहां से रास्ता चेंज ना करूं। तो मुझे जब यह रियलाइज हुआ कि देह के भान में आने से मेरे में 5 विकार आ गए हैं, और इसीलिए मुझे अभी प्रकृति को और मेरी बॉडी 5 तत्वों की बनी है, और अभी हर एक देह अभिमानी मनुष्य है, और 5 विकार 5 तत्वों में समाए है। तो मैं देह भान को छोड़ूं, देह तो चाहिए पर देह भान और देह अभिमान को जीतना है। शरीर प्रकृति का मिट्टी 5 तत्व है, इसमें विकार समाये हुए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बॉडीलेस इनकॉर्पोरियल अव्यक्त निराकार। किस लिए कहते हैं? ओरिजिनल स्टेज में पहुंचने के लिए। मिट्टी शरीर पहला है मिट्टी, अच्छा मिट्टी में ग्रेविटी है, तो जितना मैं अपने आप को ये मिट्टी का भले कितना भी सजाऊं, दिल्ली शहर नमूना अंदर मिट्टी बार चूना, मैं चूना लगा लूं व्हाइट पाउडर, मैं क्रीम लगा लूं गिल्ली मिट्टी, मैं तो सज गई, वो तो बाहर का मेरी सुंदरता है। तो अब मुझे उससे क्या होगा, मेरी तरफ मेरी बॉडी की तरफ दूसरे आकर्षित होंगे, क्योंकि धरती में आकर्षण है। तो मैं जितना जितना देह भान में हूँ, यंग हूँ, सुंदर हूँ, स्लिम हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, हैंडसम हूँ, तो ये क्या है, ये मैं धरती कॉन्शियस हूँ। फिर मेरे में इमोशंस है, 80% मेरे अंदर पानी और ब्लड है, तो जहां मेरी अटैचमेंट है, मेरे बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरे पोतरे, वो पानी में मोह है, उससे फिर मेरा मोह बढ़ता है, मेरी कामना बढ़ती है। अच्छा, वो कामना काम बेकार पीछे आता है, पहले अट्रैक्शन हुई, फिर कहा लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, आप मेरी फ्रेंड बन गई,
कॉफी
लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, चलो हम चलते हैं रेस्टोरेंट में। कप ऑफ टी पीते पीते कपटी बन गए। माँ से छिपाया, बाप से छिपाया, और ऑफिस में लेट हो गया था, और आज अफसर ने बहुत स्ट्रिक्ट था, डबल काम दे दिया। अभी काम कुछ और कर रहे हैं, झूठ बोलना सीखा, धोखा देना सीखा, इसमें धीरे धीरे हाथ पकड़ा, हाथ थोड़ा आगे बढ़ा, यहाँ गया, फिर कहीं और गया। संबंध विकारी बन गया, फॉलन इन लव, तो विकार
गिर जाओ,
किस में गिरा, तो ये उसमें फिर अग्नि जो है, उसने विकारों की अग्नि दे जलाना शुरू किया, काम अग्नि। मेरी रियली दिव्यता थी वो काली हो गई। फिर हवा, अब मैं हवा में क्या है, लोभ है।
अच्छा,
हाँ, अटैचमेंट, लोभ है, मुझे भूख नहीं है। मैं घर आई, मैंने कहा आज मेरा पेट भरा हुआ है, आज खाना नहीं है। देखा मम्मी ने पकौड़े बनाए, समोसे की खुशबू आ रही है, थोड़ा सा खाना शुरू किया, सारी प्लेट भर के खा ली। हवा, बाजार में गई तो रेडियो में सुना एक खरीदो चार फ्री मिलेंगे, मैं चार लेके आ गई, घर में रखे हैं, जरूरत नहीं है। तो हवा में लोभ समाया, आकाश मेरे अंदर सब कुछ रहे, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे से कोई बात नहीं, ईगो। और बॉडी बनी हुई है ना पांच विकारों की, पांच तत्वों की, तो जितना जितना मैं तत्व भान से, देह भान से न्यारा होता जाता हूं, मुझे आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो बढ़ती जाती है। तो मैं क्यों, मैंने रियलाइज नहीं किया कि मेरी दिव्यता की वैल्यू, जो मैं हीरा थी, वो मैं पत्थर बनती जा रही हूं, जो बुद्धि ने समझा नहीं पवित्रता के महत्व को। हाँ, पर मान चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, पर वो तो टेम्पररी रेस्पेक्ट है, प्योरिटी सम्मान देती है, तो मैं महात्मा को भी झुकता हूं। तो मैं महान आत्मा क्या, देव आत्मा बन रहा हूं, तो मुझे आकर्षण नहीं होगा, सोल कॉन्शियस में भाई भाई की दृष्टि रहेगी, ब्रह्मा के बच्चे बन गए, ज्ञान मिल गया, कल की मुरली में भाई बहन बन के रहेंगे।
तो मेन बात है आत्मिक स्थिति।
हाँ,
आत्मिक स्थिति, आत्मा समझ करके चलना, आत्मिक दृष्टि
तो
से,
इसीलिए हाँ। मतलब जब आत्मिक दृष्टि है तब मैं रहते हुए भी, गृहस्थी का मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे नहीं, ग्रह है, ये मेरा घर है, इस घर में मैं बैठी हूं, और ये कर्म इंद्रिया मेरी कर्मचारी है, ये मन बुद्धि संस्कार मेरे मंत्री है, मेरी मिनिस्ट्री है। तो मैं गृहस्थी बन गया जब मेरा मेरा किया तो, पर इसी में रहते मैं ट्रस्टी होके रहूं तो मेरे फूल समान जीवन। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सदा सोल कॉन्शियस रहो। सोल कॉन्शियस मीन्स सोल की सारी क्वालिटियां एक्ट में आए, कॉन्शियस मीन्स कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, एक्सपीरियंस।
एक है सोल कॉन्शियसनेस, उसके साथ साथ गॉड कॉन्शियसनेस,
बाबा
के साथ, बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ते हुए बल भरेंगे,
वो फिर नेक्स्ट ऑटोमेटिकली होगा, वो मैग्नेटिक एनर्जी जैसे देह देह को खींचती है, ऐसे आत्मिक स्थिति में परमात्मा के गुण मुझ आत्मा को खींचेंगे और परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा में भरेगी। इसीलिए बाबा ने कहा योग से शक्ति मिलती है
जी। तो इसीलिए सहज योग है, मुश्किल नहीं है, लेकिन विधि ठीक होगा तो सब कुछ सहज हो जाएगा।
मुश्किल तब है जबकि समाज के और प्रकृति के वातावरण के प्रभाव में आ गए, अज्ञानता को राइट माना, उसको समझा समाज का रस्म रिवाज है, परंतु अभी समझ में आया वो माया पांच विकारों के राज का समाज था और ये ईश्वरीय संप्रदाय की मैं बच्ची बनी हूं।
थैंक यू दीदी। अभी आप कह रहे थे हवा, हवा की बात चल रही थी, तो एक प्रश्न आया है उसी के कनेक्टेड। खाने का बहुत शौक है, स्वाद के रस से मुक्त कैसे बने? इन जनरल कर्मेंद्रिया जीत, प्रकृति जीत कैसे हम बने? मेन तो स्वाद की बात है।
तो अभी मुझे पता है ना कि जितना जितना मेरे में लोभ होगा मेरी चार चीजें नुकसान हो रही है। पहली बात, लोभी में रॉयल्टी नहीं रहती। लोभ वाला व्यक्ति मैं ही खाता जाऊं, स्वार्थी होता है, रॉयल्टी से नहीं खाता। ये नहीं कि दूसरे भी खाने वाले हैं। दूसरा, स्वाद जिब्बा का टेस्ट, मतलब कर्म इंद्रियों का गुलाम हो गया, कर्म इंद्रियों का राजा नहीं, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। तीसरा, रॉयल्टी से दूसरे को सिखाने का लक्ष्य नहीं है। मैं परसों मम्मा की बात सुना रही थी कि मम्मा के सामने भी भोग खाना आया, प्ले कटोरी में पनीर डाला था, बाकी सबको पनीर बहुत दिनों के बाद मिला था, तो सबने पनीर जल्दी जल्दी खा लिया। फिर दूसरे वाली कोई आया तो पनीर और दे दो। मम्मा ने नहीं खाया क्योंकि मम्मा को पता था कि मेरी खत्म होगा तो ये डालेंगे, मैं खाऊंगी नहीं, पड़ा हुआ कोई नहीं देगा मुझे। तो मम्मा ने बड़ी रॉयल्टी से अपनी कटोरी खाली नहीं होने दी, दूसरों ने खाली कर दी जल्दी। तो अंतर हुआ ना, कंट्रोल का भी अंतर होता है, सेवा का भाव भी होता है, रॉयल्टी भी होती है, और अपनी जो आदत पड़ी हुई है, कहते हैं पेट भर गया आंखें भूखी हैं, आंख की भूख नहीं मिटी, वो खा देखा अच्छी फिर और डाल दिया मुख में। इसीलिए भोग समझ के खाए तो प्रसाद समझ के थोड़े में भी संतुष्टि हो।
तो इसलिए कहते हैं ना, पेट भरा लेकिन दिल नहीं भरा, और कहते हैं ना पेट भरा लेकिन दिल नहीं भरा।
हाँ, मतलब वो संकल्प की जो है ना आश जो है
संतुष्टि नहीं मिली
क्योंकि लोभ था ना। लोभी सो भी कभी भी सभ्य नहीं होता, और लोभी हमेशा और चाहिए गरीब होता है। लोभ भ्रष्टाचार पैदा करता है। कमाई करे बच्चों के लिए और लाए, कहां से भी लाए, लोभी फिर लोभ के वश ज्यादा मेहनत भी करता है, सफर भी करता है
जी। दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है योग के बारे में। काफी तीन चार ऐसे प्रश्न है जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक है मेरा मन,
यहां से वहां से बोल नहीं, इस मैं ये वाला जो है ना, नहीं मेरे को पकड़ाओ, ये मेरा कान है, यहां से बोलने को।
ऐसे कर ले ठीक है। मेरा मन योग में नहीं लगता, बच्चों की तरफ चला जाता है, और हाउ टू मेक योगा पावरफुल योग को शक्तिशाली कैसे बनाएं? अब बल की बहुत आवश्यकता लगती है, अगर अब बल कैसे बढ़ाएं, मतलब आत्मिक बल खुद में कैसे बढ़ाएं?
क्या होते, फिर से पढ़ो इसको।
बल आत्मिक बल।
अच्छा,
आत्मिक बल को कैसे बढ़ाएं, आवश्यकता है ना। अभी तो कलयुग चल रहा है तो बहुत जल्दी शक्ति नष्ट हो जाता है। तो समय प्रमाण क्या पुरुषार्थ करे, जो यहाँ मधुबन में भी और घर में भी जाकर सहज सफल निरंतर सफलता पाए। योग की स्थिति को मजबूत कैसे बने?
अभी पहली बात, बच्चों में ध्यान जाता है, वो फर्ज है उनकी पालना करना, उनका करैक्टर निर्माण करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रचना हमारी है, हमने कर्म का हिसाब किताब बनाया है, तो ध्यान देना फर्ज है, पर चिंता करना कमजोरी है। तो जब चिंता करते हैं तो हम राइट निर्णय नहीं ले सकते, चिंता करते हैं तो शक करने लगते हैं, ये पता नहीं आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और फिर धीरज खत्म होता है तो गुस्सा करने लग जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो गुस्से में उनको सिखा नहीं सकते। तीसरी बात, कंपेयर करने लगते हैं, मेरा ये बड़ा बच्चा हमेशा फर्स्ट नंबर में आया, तू कैसा शैतान है, थर्ड नंबर में भी पास नहीं, फेल होता है। कंपेयर किया मैंने, घर में कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ाया बच्चों का, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट मेरे को फिर बच्चों की तरफ ध्यान देगा। तो हमको बाबा के बच्चे हैं, मैं ट्रस्टी हूँ, तो मैं संभाल करना मेरा फर्ज है, पर उसको अपना समझूंगा तो मेरे अंदर मोह पैदा होगा। ट्रस्टी हूँ, जैसे बैंक का खजांची हूँ, ये घर की प्रॉपर्टी है। अब खजांची के पास लाखों रुपया होता है, उसका होता है क्या? उसके हाथ से गुजरता है पर उसका नहीं होता। तो ऐसे ही ये मैं सब साधन है एक निमित्त मात्र के लिए। नर्स है, दो बच्चा बीमार है, नर्स बड़ी आराम से शांति से ध्यान से बच्चे को दवाई देती है, सेवा करती है। मेरा बच्चा बीमार है, मैं डबल बीमार हूँ, चिंता करती हूँ, तो मैं उनको ठीक कैसे करूँगी? इसलिए बाबा के बच्चे हैं, हम ग्रस्ती नहीं हैं, हम ट्रस्टी हैं, तो हमारी चिंता नहीं होगी, पर हमारा कनेक्शन रिलेशनशिप ठीक रहेगा। तो बुद्धि यहाँ भी मधुबन में भी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है परंतु पढ़ाई में ध्यान है, वहां भी कर्म करते ध्यान रहेगा पढ़ाई का।
जी, योग को कैसे बढ़ाएं,
बल को कितना जितना ये नशा रहे, जैसे आज बाबा ने कहा निश्चय है कि मुझे दे, ये राजयोग की पढ़ाई रॉयल बनाती है, राजा बनाती है। भगवान पढ़ा रहा है तो सच्ची बात सिखा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है तो मुझे सर्व संबंध का सुख मिल रहा है। तो योग सिर्फ बिंदु 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 वो योग नहीं है, पर बिंदु के साथ संबंध का नाम योग है। तो कभी बाबा को बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, तो ज्ञान का मंथन करेंगे योग लग जाएगा, महिमा करेंगे बाबा की हृदय खुल जाएगा। तो कोई अंदर की बात किसी से शेयर नहीं कर सकते, बाबा को बैठ के पत्र लिखो, बाबा के बॉक्स में डालो, पत्र लिख करके फाड़ के फेंक दो, आपका दिल हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपने वो साक्षी होकर के बाबा को दिया। तो इसीलिए योग लगाने का मतलब आत्मा का योग परमात्मा से, पर योग का मतलब शांति से शांति का योग, प्रेम से प्रेम का योग। ये मैग्नेटिक एनर्जी है, योग का मतलब बाबा के जो गुण हैं वो हमारे बर्तन में भरते जाए, ये नाम है योग। वो हमारा करैक्टर बन जाएगा, हमारे संस्कार बन जाएंगे
जी।
टाइम तो भाग रहा है पर अच्छा
थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं दीदी, बैठे हैं ना, अच्छा लग रहा है ना सबको, हाँ सुनेंगे ना और हाँ दीदी ये वाला ना हम दीदी पुरुषार्थ करके जल्दी परफेक्ट बनने के लिए कभी कभी अपनी कमियों को देखकर घबरा जाते हैं,
अच्छा
तो फिर स्वनिश्चय हिल जाता है। बाबा में तो निश्चय है लेकिन स्व में निश्चय हिल जाता है क्योंकि कमियों को देखते हैं, तो क्या करें?
भगवान आया है इसीलिए सेवा करने, हमारी कमियों को मिटाने के लिए। अगर मेरे में कोई बीमारी नहीं होती तो डॉक्टर के पास जाऊं क्यों? तो परमात्मा डॉक्टर आया हुआ है, उसकी रोज की मुरली इंजेक्शन है उसके, और मैं उसको बराबर लूं तो मेरी कमजोरी यानी समझ से कंट्रोल करनी आएगी, मिटेगी नहीं, पहले रियलाइज होगा, उसके बदले गुण भरेगा, संबंध बाबा से जुटेगा, शक्ति मिलेगी, उससे फिर वो गुण कर्म में आएगा, खुशी होगी, कमजोरी मिट जाएगी।
ना घबराने की जरूरत नहीं है, बाबा को सच सच बताएं, बाबा से डायरेक्शन लेंगे, इंजेक्शन लेंगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी।
तो अंदर निश्चय भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए, लक्ष्य भी चाहिए, मुझे बनना ही है, दृढ़ निश्चय रखना ही है। रॉयल माया सब थोड़े ही बनेंगे, अभी तो बन थोड़ी सकेंगे, इतनी घर की जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी तो वो तो आपका पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसमें कोई योग का डिस्टरबेंस नहीं हो सकता। आप घर में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, बच्चा कैसे याद आ गया, वाइफ कैसे याद आ गई, सास बैठी है क्या? काम दिया था, बच्चे ने कहा था पापा चॉकलेट लेके आना, अब पापा और चॉकलेट कनेक्शन है तो बच्चा बैठते ही रास्ते में चॉकलेट लेके आएगा बच्चा। तो ऐसे बाबा हमारे लिए क्या लेके आया है, हमारे लिए सुख सहज योग सिखाने के लिए, पढ़ाई पढ़ाने के लिए आया है, तो पढ़ाई पर जितना ध्यान होगा उतना गुण व्यवहार में आते जाएंगे। सीखने की भावना हो, बदलने का लक्ष्य हो।
दीदी एकाग्रता की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? हाँ। आज बाबा ने बोला परिवर्तन तभी हो सकता है जब एकाग्रता हो,
तो एकाग्रता का आधार है इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पर आपको किसी मैच देखने का शौक है, फुटबॉल मैच, वॉलीबॉल मैच, हॉकी मैच, हजारों लोग बैठे हैं, शोर भी मच रहा है, आप कहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्यों? आपका इंटरेस्ट है। आपको आनंद तब आता है जब आप गेम्स के नियम समझते हैं। मैं कुछ समझती नहीं, मुझे लगता है पागल है, एक उनको बॉल के पीछे लाठी लेके घूम रहे हैं मुझे तो फालतू लगता है, वो बॉल के पीछे पागल है, बच्चे थोड़े ही है,
क्रिकेट जिसने क्रिकेट की बात कर रहे हैं
या हम नहीं, तो जिसको गेम्स के रूल्स पता है उनका नेचुरल कंसंट्रेशन होगा कौन विन कर रहा है। तो बाबा स्पिरिचुअल रूल्स सिखाता है तो हम विन कर लेते हैं।
ठीक है। अच्छा एकाग्रता, फिर एकाग्रता कैसे है? फिर इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे तो फिर एकाग्रता बढ़ेगी।
समझ,
समझ,
इंटरेस्ट और लक्ष्य की मुझे बराबर ये कर्तव्य करना है, ये एक प्रायोरिटी है।
हाँ,
तो तब ये एकाग्रता होती है।
प्रायोरिटी भी चाहिए,
और प्रायोरिटी तो वो तो फिर आत्मिक बल पवित्रता है तो इधर उधर बुद्धि नहीं खींचेगी ना, ऑटोमेटिकली इधर जाएगी।
इंटरेस्ट और लक्ष्य, हाँ? लक्ष्य
उसके साथ अंदर यही के दृढ़ता है तो बिना पवित्र भाव के तो होगा ही नहीं ना। पवित्रता तो आधार है हर बात में, हृदय की स्वच्छता भी आधार है। इसीलिए एकाग्रता, एकता, क्योंकि जब मेरी किसी से कॉन्फ्लिक्ट है तो मैं एकाग्र नहीं हो सकता। किसी के साथ मेरा कर्मों का हिसाब किताब है वो मुझे खींचेगा, एकाग्र नहीं होने देगा। तो अंदर की फ्रीडम भी एकाग्र करती है।
दीदी, अगर अपना कोई कड़ा संस्कार परिवर्तन करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या अगर हम सबके लिए दिल से शुभ भावना, शुभ कामना करें कि हम पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए, तो क्या हम स्वपरिवर्तन आत्माओं के परिवर्तन के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखें, तो क्या हमारा संस्कार परिवर्तन हो जाएगा उससे?
नहीं,
या कुछ और भी करना है?
नहीं, मेरा संस्कार मुझे परिवर्तन करना है तो पहले मुझे रियलाइजेशन हो ये संस्कार नुकसान कितना कर रहा है। मेरा रिश्ता खराब हो रहा है, मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, मैं वेस्ट बहुत सोचने लगा हूँ, मुझे थकावट थोक थोक करके मतलब एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है कोई भी संस्कार को, तो पहले उसके नुकसान वो रियलाइज करेंगे, जिसको बाबा कहते चेकिंग करो, चेक करके चेंज करो।
दीदी, अगर बहुत कड़ा बहुत बड़ा विकार है तो वो समझ में आता है, दिखाई देता है, लोभ है, काम है, या फिर ये है ईगो है, बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देता है तो उसको परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जैसे आलस्य, अलबेलापन है, थोड़ा सा ठीक है ले बैक कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वो सब फिर कहते इससे कहाँ नुकसान है?
नहीं,
तो वो ज्यादा नुकसान नहीं दिखाई देता है, इसलिए परिवर्तन करने में थोड़ा सा
मेंटल लेजीनेस। वो मेंटल लेजीनेस इसलिए है कि मेरे पास क्लैरिटी नहीं है कि मेरे पास समय कम है। समझते कर लेंगे, टाइम की वैल्यू नहीं है इसलिए जल्दी नहीं करता।
कितना समय इतना महत्वपूर्ण है, अभी संगम युग चल रहा है, समय कितना महत्वपूर्ण है उसका वैल्यू नहीं है।
सीजन है ये, अगर मैंने अभी बोझ बीज नहीं बोया तो नहीं उगेगा, और अगर सीजन में मैंने अभी बोझ बोया तो कितना फायदा होगा, फ्रेश फ्रूट मिलेगा, इन्हें अबंडेंस है, कोई बात नहीं, पड़ोसी भी खाएंगे भी मैं खाऊंगा। फिर वो इतना पावरफुल है कि आज बादाम पेड़ पर मिले, मैंने कच्चे भी खाए, पक्के भी खाए, तो उसका सूखा फ्रूट भी आया। मेरा कमरा जो है, मेरे घर में काजू भी, बादाम भी, पिस्ता भी, और तो सूखा फ्रूट भी मैं खाता रहूंगा, प्रेजेंट खाली थोड़ी मिलूंगा, वैल्यू इतनी बढ़ जाती है। बोया ही नहीं तो ना फ्रेश मिला ना सूखा मिला, फिर तो खरीदना पड़े तो थोड़ा ही मिलेगा ना।
मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि भगवा छोड़कर मैं श्वेत में कैसे आऊं, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं कि भगवा छोड़कर श्वेत वस्त्र में कैसे आऊं?
भगवान छोड़,
भगवा 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 कपड़ा,
हाँ,
छोड़ के श्वेत वस्त्र में हाँ, कैसे आऊं?
नो प्रॉब्लम नहीं है।
और क्यों?
अगर तो कपड़े की बात नहीं है, बेशक बहुत दिन तक भगवा कपड़ा पहनो, अब वन ऑफ द यूनिक हो जाएंगे, सब कहेंगे अरे सन्यासी भी ब्रह्मा कुमार बन गए, सन्यासी भी ब्रह्मा, आप तो पूजनीय बन जाएंगे। शर्म की बात थोड़ी है, स्वमान की बात है। फिर अपने आप धीरे धीरे आप ब्राह्मण बन जाएंगे।
दोनों में अंतर क्या है, भगवा कपड़ा और सफेद में क्या अंतर है? और क्या
वो क्या है कि भगवा कपड़ा था वो भगवान की याद में, वो अलग अपने आप को कैटेगरी मानते थे, वो एक साधुओं की लाइन में, महात्माओं की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो बाहर की ड्रेस चेंज करते हैं। हमारा स्वच्छ कपड़े का आधार, सफेद कपड़े का आधार सिंप्लिसिटी है। स्कूल है, सब एक जैसे हों। बाबा ने क्यों बनाया ये सिस्टम? क्योंकि सिंध में फैशन बहुत, उनके हस्बैंड फॉरेनर्स, फॉरेन में काम करते थे, फॉरेन में बिजनेस था, अच्छा कमाई थी बहुत, खान पान भी ऐसा, फैशन भी ऐसा, और बहुत करके क्योंकि एक दो को देख करके आदतें भी ऐसे पड़ गई। तो अब देखा बाबा के पास शाहूकार के घर के भी आई हैं तो गरीब के भी आई हैं, तो याद ना रहे मैं शाहूकार घर की हूँ, ये गरीब घर की है। स्कूल है, सबकी ड्रेस एक जैसी है, यज्ञ से कपड़ा मिलना है, सबको एक जैसा मिलना है, सिंपल हो गया
जी। दीदी जैसे हम आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है आत्माओं का, कहीं ना कहीं ईर्ष्या रीस ये सब दिखाई देता है, तो फिर उससे आत्माएं दुखी हो जाती हैं। तो उससे कैसे हम डील करें? कोई आत्माएं हमसे रीस कर रही है, पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेवाओं करना चाहते हैं यज्ञ में, लेकिन इन सभी बातों के कारण से सेवा में आगे बढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं।
अब ईर्ष्या कोई कर रहा है, बेचारे पर रहम करना चाहिए कि अभी मेरा भाग्य वो नहीं खा रहा है, वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है तो ईर्ष्या करता है। मैं उसकी ईर्ष्या का असर अपने पर क्यों करूं? या वो अपने पुरुषार्थ में, जिस समय पुरुषार्थ का समय था, मानो मैं डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूं, मेरे पास चार पांच सेवाधारी काम करने वाले हैं, अब उसमें मैं एक्सपर्ट हुआ हूं तो नेचुरली ज्यादा काम कर सकता हूं। दूसरा जो है, फिर जो बड़ा है वो कहेगा अभी इसने ये करे ना, सारा समय मैं थोड़ी करता रहूंगा, पर मैं बॉस बन के रहूंगा। अच्छा अब क्या होगा, वो छोटा जो है वो एक्सपर्ट हो गया है, उसके साथ सबका कनेक्शन होगा, सब उसके पास जाएंगे, गुस्सा करेगा मैं बॉस हूं, मेरे पास नहीं आते, उसके पास आते हो, मेरी परमिशन लो, ये क्या है? ईगो, अपनी पोजीशन का नशा, अपनी अथॉरिटी, झूठी अथॉरिटी। ऑनेस्टी से मैं अगर कार्य वो कोई कर रहा है, मेरा भाग्य थोड़ी ले रहा है, हर एक अपना भाग्य से खा रहा है, भाग्य से सेवा कर रहा है, और मैं ईर्ष्या रख रहा हूं तो अपने को भी नुकसान कर रहा हूं, उनको भी नुकसान।
मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे ईर्ष्या कर रहे हैं मेरे प्रति, तो उसको कैसे? क्योंकि इतने सेंसिटिव है ये, चुई मुई तो कहते हैं ना,
मर्सी
मर्सी,
रहम करें कि बेचारे को ज्ञान की कमी है, वो रेस करता है, वो ईर्ष्या नहीं, वो कॉपी करता है, उसमें अंतर है। वो समझता है मेरी भी इसी प्रकार से अपोजिशन होवे, मेरी भी महिमा होवे, तो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी के कारण और राइट पुरुषार्थ न करने के कारण ईर्ष्या होती है। उनकी महिमा सहन नहीं कर सकते, उनकी विशेषता को सहन नहीं कर सकते, वो ऊंचे चढ़ जाएंगे, वो आगे जाने नहीं देते। ये सूक्ष्म है, अहंकार का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या है
जी। दीदी, परम धाम में ज्यादा टाइम ठहरने का उपाय क्या है? परम धाम में ज्यादा टाइम बुद्धि को ठहराने का
साइलेंस की प्रैक्टिस, मौन की प्रैक्टिस, कम बोलने की प्रैक्टिस, मीठा बोलने की प्रैक्टिस और साक्षी दृष्टा होकर डिटैच होने की प्रैक्टिस। जो मेरे काम की चीज नहीं, मैं सुनूं क्यों? जो मेरा सोच चले, जो फालतू नजारे चल रहे हैं और मेरे वातावरण को, मेरी बुद्धि को एक्स्ट्रा चलाते हैं, उनको मैं दोबारा सोचूं क्यों? तो जितना मेरा सोच कम, जितना मेरी दृष्टि में देखने का इंटरेस्ट कम, जितना मेरी पर्सनल अटेंशन मेरे पर रहे ये कम, उतनी मेरी पर्सनालिटी वहां पहुंचेगी। डिटैचमेंट, मतलब
डिटैचमेंट और शांति की शक्ति।
हाँ
दीदी, एक और प्रश्न है कि इन केस ऑफ डॉक्टर्स एडवाइस श्रीमत टू बी डिविएटेड और नॉट, डॉक्टर कुछ ऐसे एडवाइस करते हैं जो श्रीमत के थोड़ा सा विपरीत है, या मेडिसिन में प्याज लहसुन है या कुछ और चीजें हैं जो श्रीमत के थोड़ा सा अलग है, तो क्या करें? डॉक्टर्स के एडवाइस फॉलो करें या श्रीमत?
नहीं, अभी एक है दवाई के रूप में कोई चीज समझो उनको मिल रही है एमरजेंसी में बॉडी के क्योर के लिए, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई शौक नहीं है लेने का, तो तभी फिर समझो वो इंटरेस्ट से नहीं ले रहे, लोभ से नहीं ले रहे, कॉन्शियसली नहीं ले रहे हैं, तो तभी कभी कभी परमिशन होती है कि ये गोलियां डॉक्टर से मिली है और बॉडी की क्योर के लिए है तो लो। पर अगर आप दूसरा आयुर्वेदिक से उसके बदले दूसरा कुछ कर सकते हैं तो अपने आप को खुद संभालो, अपना डिसीजन फिर लो
जी। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा रहा सबको।
थैंक यू।
ऑलमोस्ट सभी के प्रश्नों का उत्तर सबको मिल गया, और सबको मिल गया सबका उत्तर। ठीक है,
ठीक है।
थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। अभी साइलेंस में बैठे।